कोटि से प्रणाम है मेरे माता सज्जनों सब के श्री चरणों में इस दास की असंख्य पर चरण वंदना स्वीकार कीजिएगा। जिन साधकों के नाम रामायणी सत्संग हरिद्वार के लिए स्वीकार हुए हुए हैं दिल्ली से या कहीं से भी, उनसे निवेदन है परसों सत्संग शुरू होने वाला है, उन सब से निवेदन है कि समय से पूर्व ही पधारने की कृपा करें। कल पहुँचे या परसों सुबह तक समय पर पधारने की वहाँ कृपा करें। इसी संबंध में साधक श्री वीरेंद्र जी आपसे करपत्र प्रार्थना है। आप साउंड सिस्टम के इंचार्ज हैं, जिस किसी साधक को भी आप नियुक्त करें आगे से इसी सत्संग से शुरू हो। अब से लेके किसी प्रकार की, मुझे पता नहीं था कि वहाँ रिकॉर्डिंग होती है, किसी ने बताया भी होगा लेकिन मुझे याद नहीं, मेरी यादाश्त इसी प्रकार की है। इसी सत्संग के लेके कम से कम हरिद्वार साधना सत्संग में किसी प्रकार की कोई रिकॉर्डिंग नहीं होगी। साधना का स्थान है वह, साधना करने के लिए बच्चों को भेजिएगा वहां पर। साउंड सिस्टम का मामूली सा काम उन्हें दीजिएगा, या जो कुछ बाहर दिखाना चाहते हैं आप अंदर से वह दीजिएगा, इससे अधिक बिल्कुल कुछ नहीं। ऐसा ना हो कि मैं किसी साधक से पूछूं क्या सुना आपने कल या परसों, और वो कहे कि मैंने कुछ सुना ही नहीं, इससे बढ़ के मेरे लिए थका और कोई नहीं होगा। जिन चीज़ों के लिए साधक श्रो हम बहुत महत्व देते हैं, शास्त्र एवं परमात्मा उन सब चीज़ों को महत्व नहीं देता। हमें ढोलक बाजे चाहिए, तरह तरह के इंस्ट्रूमेंट्स चाहिए, अपने आप को प्रोजेक्ट करने के ढंग चाहिए, और परमेश्वर चाहता है कि मुझे प्रोजेक्ट करो न कि अपने आप को। इन चीज़ों की आवश्यकता बहुत गौण रखिएगा। अपने व्यक्तित्व को बनाना है साधना से, यदि वहाँ जाके भी साधना का अवसर साधक को न मिला तो फिर कहाँ मिलेगा। पूर्ण आशा है आप इस बात का आगे से ध्यान रखेंगे, ये अभी से शुरू हो। धन्यवाद। चर्चा चल रही थी देवी सज्जनों, माँ सुमित्रा अपने लाडले लखनलाल को उपदेश दे रही हैं। कहती हैं, वत्स राग रोष ईर्ष्या मद एवं मोह, पांच मुख्य बाधाएं भक्ति के मार्ग में, साधना के मार्ग में। आज एक माँ अपने पुत्र को दीक्षा दे रही है, भक्ति की दीक्षा दे रही है। माँ सुमित्रा उपासना की प्रतीक है, अध्यात्म में उपासना कहता है। वह उपासना की दीक्षा दे रही हैं एक साधक को, प्रभु राम की सेवा करने के लिए तो जा रहा है, एक स्वामी की सेवा करने के लिए जा रहा है। इन बातों का ध्यान रखना। राग रोष ईर्ष्या मद एवं मोह, कभी स्वप्न में भी इनके वशीभूत नहीं होना। शब्दों पर ध्यान दें, कभी स्वप्न में भी इनके वशीभूत नहीं होना। अपने आप को विकार रहित करके तन से मन से एवं वचन से यदि प्रभु राम की सेवा करोगे तो तेरे हृदय में उनके प्रति अविरल विशुद्ध प्रेम पैदा होगा, नित्य नवीन। ये शब्द माँ सुमित्रा ने प्रयोग किए, नित्य नवीन, मानो नित्य बढ़ने वाली प्रीति तेरे अंदर पैदा होगी। ऐसी नहीं कि आज पैदा हुई और खत्म हो गई, ना, नित्य बढ़ने वाली प्रीति। तो साधक चलो सत्संग के समय किसी भी अच्छे संत के संग में बैठेंगे, प्रीति की चिंगारी तो उसी वक्त फूट जाती है, लेकिन वह कब तक जलती रहती है देखने की बात तो ये है। बाहर जाते ही वह चिंगारी बुझ जाती है, आप बुझा देते हैं या उस चिंगारी की लौ आप साथ लेके जाते हैं और उसको और आगे फ्लेयर करते रहते हैं, उसको और आगे बढ़ाते रहते हैं। माँ सुमित्रा ये कहती है आपको अविरल प्रीति मिलेगी, ये सब कुछ का पालन करोगे तो तुम्हें अविरल विशुद्ध प्रीति मिलेगी। कैसी प्रीति? जो सदा बढ़ने वाली प्रीति होगी। पिछले रविवार को साधकों मद की चर्चा की जा रही थी, साधकों को सावधान किया जा रहा था, मैं भी इसी में श्रेणी में आता हूं साधकों। ये कोई पद मिलता है, आपसे अर्ज की थी कि शब्द पद दीक्षिगा प द पद कोने में थोड़ी सी घुंडी लगा दो तो मद बन जाता है। कितना साम्य है इन दोनों शब्दों में। मानो जिस किसी को पद मिलता है मद आने में बहुत देर नहीं लगती। यूं कहिएगा जैसे ही इस पद के साथ अभिमान अहम जुड़ता है तो मद हो जाता है। तो मद में क्या होता है? शुरू से लेके साधक को देखते हैं, अंत तक आगे बढ़ता जा रहा है साधक, सेवक आगे बढ़ता जा रहा है, उसकी सेवा बढ़ती जा रही है, लेकिन चिन्ह हमारे अंदर मद के क्या प्रकट होते हैं? सेवकाई के नहीं, मद के क्या चिन्ह प्रकट होते हैं? मद की तुलना भक्तजनों संतों महात्माओं ने नशे के साथ की है। जैसे नशे में पांव लड़खड़ाने लग जाते हैं, एक साधक जैसे ही सेवकाई सेवादारी शुरू करता है तो उसकी चाल में सबसे पहले अंतर आना शुरू हो जाता है। आप देखना, कभी भी अपने ऊपर देखना, औरों के ऊपर देखना, उनकी चाल बड़ी अलग हो जाती है। एक पीछे भावना छिपी हुई है, हम किसी न किसी ढंग से औरों को विशेष दिखाई देने चाहिए। क्यों? उन्हें सेवकाई मिल गई है। सो सेवकाई का मद ना आए साधक चलू, तुलसी कहते हैं कि ये असंभव सी बात है। पद मिलते ही मद आना बहुत जरूरी है, सत्ता मिलते ही किसी के अंदर भी साथ ही साथ मद जरूर आएगा। मानो आपकी उन्नति को रोक देगा, आपकी उन्नति आगे नहीं बढ़ सकेगी, आपकी साधना प्रगतिशील नहीं हो सकेगी। क्यों? ये यही खत्म नहीं होने वाला, ये आगे चलता जाएगा। वह व्यक्ति उसके अंदर अपने आप को विशेष बनने प्रोजेक्ट करने की ये वृत्ति बढ़ती जाएगी। लोग मेरी प्रशंसा करें, लोग मेरी वाह वाह करें, ये चाह बढ़ती जाएगी, ये कामना बढ़ती जाएगी। अपने जैसी सुरसा का मुख देखा, जैसी जैसी बढ़ता जाता है निगलने के लिए तैयार, ठीक इसी प्रकार से इसका मुख भी बढ़ता जाता है और वह निगलने को तैयार। मत का नशा भी बिल्कुल ऐसा है। क्यों? ये साधक अब, ये सेवक अब यश पान की चाह, इसके अंदर कामना उत्पन्न हो गई है, मेरी प्रशंसा हो, मेरा यश मान हो, मेरी ख्याति हो, मेरी रिकग्निशन हो। अतएव उसके कर्म सारे के सारे इस प्रकार के हो जाते हैं जिससे उसका अलगत्व प्रकट हो, वह औरों की अपेक्षा आपको अलग दिखाई देने लग जाए। आगे बढ़ो। अब वो किसी से कुछ पूछना नहीं चाहता, पूछने वाला छोटा होता है, पूछने की जरूरत नहीं है। किसी ने पूछना हो तो मेरे से पूछे, वह अपने आप कुछ बताता भी नहीं है। क्यों? मैं बताऊंगा तो जितनी जानकारी मुझे है वह उसे भी हो जाएगी ना। वह सब कुछ अपने पास ही रखना चाहता है, वह दूसरों को बताना भी नहीं चाहता। एक बात साधक चुनू, थोड़ा सा और आगे बढ़ू, एक बात और आ जाती है उसमें। सब कुछ जो कुछ भी हो वो मेरे माध्यम से हो। साधक चुनू, मैं कोई नई बातें नहीं कह रहा, ये सबके अनुभव में ये बातें आती हैं, आती रही हैं और आती ही रहेंगी। ये इतनी आसानी से सुनने के बावजूद भी छूटने वाली नहीं। क्यों? व्यक्ति नशे में है। नशा उतरेगा तो ये सब चीजें जो हैं वह एक एक करके धीरे धीरे करके छूटेंगी। अब वो चाहता है सब कुछ मेरे माध्यम से हो। जो कुछ मेरे माध्यम से हो वह मर्यादित है, उचित है या अनुचित, तब उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, वही चीज किसी अन्य के माध्यम से होती है तो वह भारी विरोध करेगा। ये सब किसके चित्त हैं साधक जनों। जब व्यक्ति को मद होता है, जब व्यक्ति साधक मद में चूर होता है, तो ये सब चीजें उसके अंदर आती हैं। लक्ष्मण जी ने भरत जी महाराज को आते देखा चित्रकूट के बाद, आते देखा प्रभु राम से कहा, ये भरत मद में चूर हो गया है, इससे मैं मार डालूंगा। इसकी मां कतई ने जो कुछ किया वो तो मैंने सहन कर लिया, लेकिन जो ये करने के लिए आया है मैं सहन नहीं करूंगा। बड़े रोष में है लक्ष्मण जी। जानते हो प्रभु राम ने क्या कहा? कहा, लखन भरत जैसा भाई आज तक न कोई पैदा हुआ है न कोई होगा। मैं तेरे सिर की कसम खा के कहता हूं, पिताश्री के सिर की कसम खा के कहता हूं, उन जैसा भाई भक्त का हो भाई नहीं, उन जैसा सेवक का हो, उन जैसा प्रेमी का हो, ऐसा प्रेमी जिसे प्रियतम अपना प्रियतम बनाना चाह रहा है, अपना प्रियतम बना लेता है, ऐसा प्रेमी भक्त। मैं तेरे सिर की कसम खा के कहता हूं लखन, भरत को विष्णु पद, शिव पद, ब्रह्मा पद, तीनों पद इकट्ठे भी मिल जाए तो भी उसके अंदर कभी मत नहीं आ सकता। आई एश्योर शो कम डाउन, नीचे आ बैठ। आह, कहते हैं इतनी सी बात सुन के लक्ष्मण बहुत शांत हुए हैं, शीतल हुए हैं। क्रोध तो सिर्फ इसी कारण था ना कि मेरे राम का कहीं अनिष्ट ना हो। भाव इतना सुंदर था, कहते हैं दोनों ने अपनी गोद में नहीं तो बीच में बिठा के, तो दोनों ने सिर पर, सीताराम ने दोनों ने सिर पर हाथ फेरा, बहुत प्यार किया लक्ष्मण को। आज साधक्षण थोड़े समय के लिए मोह की चर्चा करते हैं। यदि भक्तजनों इस मोह की परिभाषा याद रखोगे तो फिर और कुछ कहने की जरूरत नहीं है। ये मोह क्या है? इतना बड़ा संसार है, उसमें से, उस संसार में से चार लोग, छह लोग, ज्यादा से ज्यादा 10 लोगों का परिवार। इतने बड़े संसार में से 4 से 10 लोगों को चुनके उनके लिए ही कमाना, उनके लिए ही जीना, उनके लिए ही खाना पीना, उनके लिए ही झूठ बोलना, उनके लिए ही बेईमानी करनी, हेरा फेरी करनी, रिश्वत देने वाली ने छल से, कपट से, मर्यादा से, अमर्यादा से उन्हीं के लिए कमाना, और उन्हीं द्वारा अपमानित हुए जाने पर भी, तिरस्कृत हुए जाने पर भी, रोज अपने ही बच्चे आपको ठोकर मारते हैं, सो व्हाट, अपने हैं ना। अपमानित होने पर भी, तिरस्कृत होने पर भी, यदि आपके अपनेपन में कोई कमी नहीं आती तो ये मोह है। पुनः सुनो, इतना बड़ा संसार है, संसार के प्रति तो आपका वैराग्य है, मेजॉरिटी के लिए तो, उनके प्रति तो आपका वैराग्य है, कुछ 4-10 लोगों के प्रति आपका राग है, आपका मोह है। तो क्या चिन्ह? उन्हीं के लिए आप जीते हो, खाते हो, पीते हो, उन्हीं के लिए बेईमानी, गलत ढंग से कमाते हो, रिश्वत देते हो, रिश्वत लेते हो, बेईमानी, हेरा फेरी करते हो, इत्यादि इत्यादि, और उन्हीं द्वारा नित अपमानित होने पर, तिरस्कृत होने पर, उनकी ठोकरें खाने के बावजूद भी यदि आपके अपनेपन में किसी प्रकार की कमी नहीं आती तो ये मोह है। ये मोह की एक परिभाषा है। दूसरी परिभाषा, आप जानते हैं परम सुख, परम शांति, परमानंद, ये सब चीजें परमात्मा के पास है। बच्चा बच्चा इस चीज को जानता है, ये किनके पास है? परमात्मा के पास। सब सुखदाता राम है, सारे सुखों का दाता परमात्मा, परमानंद का प्रदाता परमात्मा, परम शांति का प्रदाता परमात्मा। ये जानते हुए भी हम परम शांति को, हम परम सुख को, परमानंद को वहां ढूंढ रहे हैं, टटोल रहे हैं जहां अशांति एवं दुख के अतिरिक्त कुछ नहीं है, तो ये मोह है। मुझे नहीं लगता इसके बाद कुछ कहने की जरूरत है, पर मात्र जानकारी से तो हमारा सरोकार नहीं है। माता टांगे शमशान घाट तक पहुंच चुके हैं, लेकिन मोह टस से मस नहीं हुआ, बरकरार है। कैसे छूटेगा? चर्चा का विषय तो ये होना चाहिए, जानकारी तो हमें इस बात की होनी चाहिए। जब तक लेश मात्र भी मोह हमारे अंदर बना रहेगा, हमें परमात्मा के द्वार, हरि के द्वार में प्रवेश नहीं मिल सकेगा। सारे दुखों की जननी, सारे दुखों का कारण मूल मोह, शास्त्र कहता है। कैसे मरे? आज एक बुजुर्ग, सुबह सुबह का समय है, सैर कर रहा है, लेकिन रो रहा है, सैर करता हुआ रो रहा है। एक संत मिले हैं, पूछा क्या बात है? इस वक्त तो लोग भजन पाठ करते हैं, राम राम जपते हैं, आप क्यों रो रहे हो? मरना चाहता हूं, मरने के लिए घर से निकला हूं, कहीं देख रहा हूं, कहीं रेलगाड़ी आती हो, ट्रक आता हो, तो उसके नीचे अपने आप को कुचल के मार डालो। क्या बात है? इतना अनमोल जीवन, मानव जीवन, इतना अनमोल मिला परमात्मा का वरदान, और तुम इसे नष्ट करना चाहती हो, क्या बात है? कहा बहुत परेशान हूं, सेवानिवृत्त हूं, दो पुत्र हैं, 500 रुपया मुझे महीने की पेंशन मिलती है। यह बहुत पुरानी बात नहीं, कुछ ही वर्ष पहले की बात है। 500 रुपया महीने की मुझे पेंशन मिलती है। किसी एक पुत्र के पास होता हूं, पूछता है पेंशन का क्या करोगे पापा? 200 तुम्हें दूंगा, 200 दूसरे के दूंगा और 100 रुपया अपने पास रखूंगा। इतनी बात सुनते ही मेरी पिटाई शुरू हो जाती है, हाथ में छड़ी होती है इनके और मुझे मारते हैं। इनको छोड़ के दूसरे के पास जाता हूं, पेंशन का समय आता है, वही प्रश्न, वही मेरा उत्तर, वहां भी पिटाई होती है। देखो मेरी पीठ देखो, मेरा सिर देखो, अभी भी चोटें लगी हुई हैं मुझे। अतएव मैं मरना चाहता हूं, मैं इस ढंग से जी नहीं सकता। संत महात्मा कहते हैं, बाबा मेरे साथ एक काम कर, तू इससे बचना चाहता है ना मोह से? हां बचना चाहता हूं। जो तेरी दुर्दशा हो रही है, वो नहीं कहा, दुर्दशा जो तेरी हो रही है तू इससे बचना चाहता है? कि हां बचना चाहता हूं, चल मेरे साथ हरिद्वार, वहां पर एक कमरा मिलेगा, काली कमली वाले का अनुक्षेत्र है, वहां पर तू 300 रुपया देगा, कमरा और भोजन तुम्हें मिलता रहेगा, तेरे पास 200 रुपया बचेगा। उस 200 रुपये को तू अपने पास रखना चाहे अपने पास रख, अपने पुत्रों को भेजना चाहे जैसी तेरी मर्जी, तुझे और किसी चीज की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। चल मैं जा रहा हूं हरिद्वार, मेरे साथ चल। सो तो ठीक है महात्मन, वृद्ध कहता है, सो तो ठीक है, पिटाई तो मेरी होती है, हर महीने होती है, शायद महीने में कई बार भी होती है, लेकिन जब शाम को मेरे पोते पोती मेरी गोद में आके तो मुझे बाबा जी कहते हैं, तो सारी की सारी पीड़ा मेरी गायब हो जाती है। की मुख है। मत सोचिए का देवियों सज्जनों, वे महात्मा ये तीर्थ नगरी, ये कुंभ नगरी, इस नगरी में जाने के लिए नहीं कह रहे। बहुत मार्मिक बात हमें समझा रहे हैं संत महात्मा। इस मोह को मारना चाहते हो तो तीर्थ नगरी या कुंभ नगरी हरिद्वार जाने से ये मोह नहीं मरेगा। आज तक हम तीर्थ पर्सने के लिए ही जाते हैं, वहां पर तीर्थ नगरी में ही जाते हैं, लेकिन संत नेवर मेंट इट। संत कहते हैं हरि के द्वार चाहे, हरिद्वार हरि के द्वार चल, इसके अतिरिक्त मुख से छूटने का और कोई साधन नहीं है। तो साधक चलो चलो सब हरि के द्वार, तो ही इस मोह रूपी बंधन से छूटोगे और कोई नहीं। आसक्ति कैसे कटेगी? आसक्ति से। मोह कैसे मरेगा? मोह से। परमात्मा से, हरि से मोह जैसे जैसे होने लग जाएगा तो संसार के प्रति अपने आप मोह छूटता जाएगा। जरूरत है तो अपने मोह को, अपनी प्रीति को परमात्मा के साथ जोड़ने की। तो यही समाप्त करने की इजाजत दीजिएगा। धन्यवाद।